अगला हिस्सा शुरू करेंगे। 25वां पारा आयत नंबर 47 से 54। हाउस बिलाई ने शैतान निरजीव इलैहि युरद्दु इल्मुस्सा, उसी की तरफ लौटाया जाता है क़यामत का इल्म। कौन? अल्लाह की तरफ। क्या होगा उस दिन, उसकी दलील क्या है? वमा तखरुजु मिन समरातिन मिन अखमामिहा, और नहीं निकलते फल अपने शगुफों में से। समरात, समरतुन की जमा, और अखमाम कहते हैं गिलाफ को, जो छिलका से एक होता है बाज फ्रूट्स के ऊपर। जैसे कभी आपने नारियल देखा उसके बाहर है, या बाज दफा जैसे मकई के बाहर एक छिलका होता है ना, तो कोई ऐसा एक आउटर जो उसकी बाउंड्री है। तो इशारा यह कि फल जब भी कभी अपने शगुफों में से निकलते हैं। वमा तहमिलु मिन उन्सा, और नहीं उठाती कोई मुअन्नस यानी फीमेल, वला तदउ इल्ला भी इल्मी ही, और ना कोई जनती है मगर उसको उसकी खबर है। यहां से आप देख रहे हैं कि एकदम अंदाज बदल गया। पीछे बात कुछ और थी, अब यहां क़यामत की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों की तरफ से जिन एतराजात का सामना करना पड़ा, उसमें एक बहुत बड़ा एतराज क्या था कि क़यामत कैसे आएगी, ये कैसे हो सकता है कि मरे हुए लोग दोबारा जिंदा हो जाएं और जो लोग आज हमारे पास हैं वो चले जाएं। तो अल्लाह ताला ने कायनात में से मिसालें दी। पहली मिसाल देखिए कि फलों का शगुफों में से निकलना या गिलाफों में से निकलना। हम सब जानते हैं कि मुख्तलिफ मराहल होते हैं, बीज से लेकर फल के बनने के बीच के मुख्तलिफ मराहल ऐसे हैं जैसे बच्चे से जवानी तक, किसी इंसान का अपनी ज़िंदगी के अरूज पे पहुंचना, और जवानी के बाद फिर बुढ़ापा कैसे, जैसे फल पकने के बाद फिर कटता है, फिर सूखता है, फिर भूसी बन के दोबारा जानवरों के पेट में चला जाता है। तो ये कायनात का असूल है कि एक दाने को इतने दानों में बदलने वाला कौन है, तुम बताओ? और कौन है जो इतनी खेतियों को बाद में फिर बंजर कर देता है? इल्ला बिल्मी ही, अल्लाह को उसका इल्म है। मतलब यह कि ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है, तो जो फलों को निकाल सकता है वो तुम्हें कब्रों से क्यों नहीं निकाल सकता। दूसरी निशानी देखिए कि वमा तहमिलु मिन उन्सा, ये जो लफ्ज उन्सा है ना, इसी से मुअन्नस का लफ्ज है उर्दू में जो हम बोलते हैं फीमेल के मानों में, यानी इससे मुराद औरत नहीं है सिर्फ, क्योंकि औरत तो औरत सिर्फ एक जिन्स है ना। उन्सा से मुराद हर उन्सा, जैसे गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी, मछली, हर एक, यानी कोई भी दुनिया में मखलूक ऐसी कि जिसके पेट से फिर बच्चा निकलता है। वला तदौ, तदा का लफ्ज़ क्या होगा रूट? हम उर्दू में क्या बोलते हैं बच्चे की पैदाइश को? वाओ है जी। तो इसमें तदा का लफ्ज है ना, ये ता अलग, असल में फिर यहाँ मुअन्नस की है, इसको अगर छोड़ दें वाओ गायब हो चुकी है। लफ्ज वही है जिसको उर्दू में वज़ह हमल कहते हैं, यानी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है या फीमेल, और उसके बाद बच्चे की डिलीवरी होने के सारे मरहले अल्लाह के इल्म है। तो क्या उसको क़यामत का नहीं पता? यानी क़यामत जो आज एक गैब का मामला लगता है, अल्लाह के लिए वो ऐसे ही है जैसे कि हाजिर का मामला है। तो जिस तरह दुनिया में एक बीज कहीं छुपा हो, वो छुपा नहीं रहता, बारिश पड़ते ही वो बीज ऊपर उठ जाता है, इसी तरह क़यामत के दिन कोई रूह का कोई एक छोटे से छोटा हिस्सा भी अगर कहीं किसी जिस्म का बचा हुआ है, या अगर नहीं भी है, अल्लाह उसको निकाल देगा। हदीस में आता है कि जब इंसान दफन किया जाता है, सारा जिस्म उसका जो है वो मट्टी खा जाती है, सिवाय कमर के मोहरे के, वो बीज की तरह मट्टी में दबता जा रहा है। जब बारिश होगी सूर फूकने के बाद, तो उसके बाद वहां से फिर इंसान उगेंगे। तो वही मराहल सारे इधर भी बता दिए गए कि याद रखो कि अल्लाह का इल्म कितना बड़ा है। वह यौम युनादी हि मैन शुरकाई, अब क़यामत की झलकियां, और जिस दिन इनको वो पुकारेगा, कहाँ है मेरे वो शरीक, कालू आज़न्ना का मा मिन्ना मिन शहीद, वो कहेंगे हमने अरज तो कर दिया है कि हम में से तो कोई भी गवाही देने वाला नहीं। इमेजिन कीजिए, सारी जिंदगी अल्लाह के माँ सिवा को पुकारते रहे, और वहां जाके कहेंगे हमने कह तो दिया है कि कोई नहीं है। यानी ऐसी बात है जैसे झंझलाहट है कि बार बार क्यों हमें कहते हो कि लाओ अपने शरीकों को, जिनसे मांगते थे, जिनको अंदाता कहते थे, जिनको गौस कहते थे, जिनको मुश्किल कुशा कहते थे, किधर है? ये जो लफ्ज है ना आजन ना का, इसमें क्या लफ्ज छुपा हुआ है? इजन, अजान, उजुन, कान, वही लफ्ज है कि हमने तो आपको पहले ही बता दिया ये बात। असल में ये बेबसी का कलमा है कि जब कोई बात का जवाब देने को दिल ना करे। ये बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चा माँ को बार बार तंग करे ना, तो माँ क्या कहती है? कह नहीं दिया तुमको, बता नहीं दिया तुमको, बिल्कुल वो बेबस है। इतना भी नहीं कह सकेंगे कि दुनिया में कोई नहीं था, बस हम झूठे सहारे करते थे, बस कह देंगे कह जुदी है, यानी अब इस मौजू पे बात ना करो। वदल्लान हूं माँ कहानू यदू न मिन कबल, और वो सब गुम हो जाएंगे इनसे जिन्हें वो पुकारा करते थे इससे पहले, खो जाएंगे सब उनसे। कौन थे वो जिनसे मांगते थे और जिनके गुण गाते थे और जिनकी नाराजगी से डरते थे? आप कह सकते हैं कि उस दिन की सख्ती को देखकर गोया इनके हाथों के तोते। वजन नुमा लहुम मिन महीस, और वो यकीन कर लेंगे कि अब इनके लिए कोई जाए फरार नहीं है। क्या गुमान कर लेंगे कि कोई जाए फरार नहीं है। जो लफ्ज ना महीस, हा या स्वाद इसका रूट है, मीम जो ये जर्फ का, यानी जर्फ मकान कह लीजिए। क्या अब ये किधर जाए, क्या जाए? हमारे यहाँ उर्दू में इसके बहुत सारे मुहावरे हैं, जैसे कहते हैं कि अब तो जमीन भी पनाह नहीं देती, यानी कहाँ जाऊं मैं, किस जगह जाऊं। बाज़ दफ़ा इंसान अपनी जुबान में कुछ ऐसे जुमले बोल रहा होता है, उसी की तरफ इशारा है कि आज जाएं तो किधर जाएं, जिधर जाते हैं अल्लाह की पकड़ है, जिधर जाते हैं अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं, लिहाजा ऐसे लोगों को ना छेड़ें। इन आयतों को सुनते वक्त क्या आपके जहन में आखरत का नक्शा आया? आखरत जो एक हकीकत है, क्या वो हम सब की आंखों में नहीं आती? क्या सिर्फ मक्का वाले क्यामत के आने का इनकार करते थे, आज वाले नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। जब हम ये कहते हैं मौज करो, मस्ती करो, देखेंगे, ये दुनिया तो नकद है, आखिरत तो उधार है, और जब होगा आग में डाले जाओगे फिर सोचोगे कि देखा जाएगा, पुलसरात पे डाले जाओगे फिर देखोगे। मतलब कहने का ये है कि तुम अपने आप को आज आंखें खुलवा लो अपनी, वरना कल तुम्हारे ऊपर मुश्किल आएगी। और ये सारी चीजें इंसान को आखिरत से फिर निडर कर देती हैं। और याद रखिए कि बंदा अल्लाह से निडर ऐसे नहीं होता, अंदर कोई बूटी रखी होती है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना, जिस तालिब इल्म ने कोई नकल मारने का इंतजाम किया होता है ना, वही मुतमईन बैठा हुआ। अदरवाइज दूसरे तो पढ़ पढ़ के भी कहते हैं कि पता नहीं कहीं वो ना आ जाए जो छोड़े में, पता नहीं जो आता है वो भूल ना जाए, पता नहीं। तो क्यामत के बारे में जो लोग खुशफहमियों का शिकार है, या तो सिफारिश की बूटी रखी हुई है, कोई मदद करेगा सिफारिश कर देगा, या कहीं अंधी अकीदत है या कुछ और है। और आखिरत का अकीदा खराब होता है तो उसका सबसे पहला असर बंदे के अमल पे पड़ता है। वही बात है कि जिसको ये पता है कि मैंने उसको एक तोहफा देना है, नंबर दे देना है, वो क्यों पढ़े? तो अकीदे में मेरी जो कमी है उसका असर मेरे अमल से देखा जा सकता है। इसको सोचते हुए हम सब अपने ऊपर लेके सोचें, क्या वाकई मुझे यकीन है कि अल्लाह का हिसाब होना है? आपको था कि अबू बकर सिद्दीक रोया करते थे, कभी तड़पते। हजरत आयशा एक दफा चिड़िया को देख के कहती, काश मैं चिड़िया होती, दरख्तों पे फुदकती और मरती व कुंती नसीया मनसीया, फिर भूली बिसरी होती। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक मौके पे जमीन से तिनका उठाया और तिनका उठाकर क्या कहा, काश अबू बकर तू तिनका होता, तोड़ के मसल के फेंक दिया जाता और तेरे से हिसाब ना होता। हमें तो ऐसे लगता है कि जैसे हम जन्नत के सर्टिफिकेट हाथों में लिए बैठे हैं, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें आखिरत की फिक्र दे दे। इसके बाद अब मौजू फिर पलटता है। असल में आप देख रहे हैं कि इस सूरत में मक्का के माहौल में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतराजात थे, उसी को एक एक करके देखा जा रहा है। तो आयत 49 को देखेंगे, ला यस्समुल इंसान मिन दुआइल खैर, इंसान भलाई मांगने से नहीं थकता। यहां भलाई से क्या मुराद है? खैर क्या है? दुनिया की नेमतें और मालो दौलत, सिर्फ लिख लीजिए यह लफ्ज, सिर्फ दुनिया की नेमतें और मालो दौलत। सिर्फ दुनिया मिलना बहुत आसान है, अल्लाह हलाल से भी दे देता है, अल्लाह हराम से भी दे देता है, अल्लाह अपनी खुशी से भी देता है, अल्लाह अपनी नाफरमानी से भी दे देता है। लेकिन ऐसी दुनिया मिलना जिसके बाद आखिरत भी मिले, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। तो क्यों कहा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह से वो दुनिया मांगो जिसके बाद हिसाब ना हो, वो दुनिया ना मांगो जिसके बाद अल्लाह की पकड़ ना हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का वो कॉल फिर याद कर लीजिए कि मैं उस दुनिया के लिए क्यों मरूं कि हलाल से मिले तो हिसाब है और हराम से मिले तो अजाब है। तो हम अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि हमें हिसाब और अजाब वाली दुनिया नहीं बल्कि बेगैर ही हिसाब वाली दुनिया दे दे। तो ज़रूरत इस बात की कि इसकी फिक्र की जाए, ख्वाहिशें तो कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ वही मस्सहु शर्रु फयऊसुन क़नूत, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुँच जाए तो बिल्कुल मायूस हो जाता है, और उसके बाद फिर वो क्या होता है, हर खैर से दिल शिकस्ता होता है। देखिए ज़रा अपने ऊपर सोचें, मैं और आप देखें, दो में से एक पोजीशन हमारी अक्सर होती है, या हम खुश होते हैं या हम दुखी होते हैं। कोई नेमत मिली होती है या हमसे कोई नेमत छिनती है, यानी या अल्लाह हमारी सुन लेता है या फिर हमें अल्लाह की माननी पड़ती है। क्या है एक रवैया इंसान का, अब जरा नोट करें, मैं अगली आयत के साथ फिर दोबारा आपके साथ चलूंगी। पहली चीज क्या देखी कि सिर्फ खैर मांगता है, उसको सिर्फ दुनिया चाहिए, दुनिया 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 दुनिया, जैसे मर्जी मिले। ठीक है, ये नजरिया किसका होता है? काफिर का। उसको सिर्फ दुनिया चाहिए, चाहे अल्लाह नाराज़ है, दुनिया नाराज़ है, कुछ वो कहता है दुनिया मिल जाए मौज करूँ, मैं मिलियनेरियन बन जाऊँ, मैं बिलियनेरियन बन जाऊँ, दैट्स इट, कुछ भी हो उसके बाद, ठीक है। ऐसे शख्स का हालत क्या है कि जब इसको कभी तकलीफ पहुंचे, इसका बिजनेस फ्लॉप हो जाए, इकोनॉमी ड्रॉप हो गई, इसकी फैक्ट्री में आग लग गई, या फिर दुनिया के चाहने वाले की दुनिया कम हो गई, तो इस वक्त क्या होता है, फयऊसुन कनूत। अगर आप दोनों लफ्ज़ों पे गौर करें ना, क्योंकि अब इन पारों में आपको लफ्ज़ों पे गौर करना आना चाहिए। फयऊस क्या है जी, लफ्ज़ क्या है इसके अंदर जो उर्दू में हम बहुत बोलते हैं, मायूस भी इसी से है बिल्कुल, और यास, असल इसकी रूट यास है, कहते हैं ना कि उम्मीद और यास के बीच में, या हमजा सीन है यानी, और यऊस के फाउल का वजन है, सुपरलेटिव डिग्री है, अफसलु तफसील का सीख है, यानी बहुत मायूस। आप इसका इंग्लिश लिख लें डिप्रेशन, डिप्रेस्ड पर्सन, कोई खुशी नहीं, हंसता नहीं, बोलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, पूछो क्या मसला है, आई डोंट नो, मेरा दिल टूट गया, मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह ने मेरे साथ ये क्यों किया, नऊज़ुबिल्लाह। और कनूत कहाँ है, ये कहाँ पढ़ा है आपने, अभी बहुत माजी करीब में पढ़ा है आपने, قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله, تقنطوا تھا یہاں قنط ہے, اب دیکھیے آپ یہاں عربی کے مخارج کی بات کروں گی اور ہم سب اپنی عربی کو دیکھیں ترجمہ کیسے بدلتا ہے, اگر آپ قاف نون توئے کی جگہ اس کو پڑھ دیں قاف نون تھا قنوت, قنوت نازلہ کیا ہوتا ہے, قانتین, قوم للہ قانتین, ٹھیک ہے, اور یہاں کیا, تو فرق کتنا فرق ہے, وہاں قنوت میں دو چیزیں آپ کو بتائی تھی, ابھی آپ کو فوری یاد نہیں آئیں گی, بار بار سنیں گے یاد رہیں گی انشاءاللہ, دوام اور عاجزی. 22 پارے کی پہلی آیت میں بھی پڑھا تھا وَمَنْ يَقْنُتْ, اور جو عورت بہت فرما برداری کرے اللہ کی تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, لیکن یہاں کیا قنوت, اب مجھے آپ کو تے اور توے کا فرق ہی نہیں پتا, تا اور توا کو ایک ہی جیسا پڑھتے ہیں تو معنی کتنا بدل جائے گا, اور معنی یہاں کیا قنوت, بہت ہی ناشکرا, بہت ہی مایوس, اور قنوت کہہ دیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہمبل اور بہت عاجز مزاج ہوتا ہے, معنی بدل گیا نا, تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے مخارج کو ٹھیک کر لیں, ادروائز قرآن کا معنی بدل جائے گا. چلیے ایک رویہ ہو گیا اس شخص کا جس کو نعمتیں ملتی ہیں, مانگتا صرف دنیا ہے, دنیا چنی ڈپریس, اور آپ لکھ لیں مومن پہ مشکل بھی آتی ہے تو وہ ریلیکس رہتا ہے, کافر یا تو بہت خوش اور یا بہت نقصان میں, ایکسٹریمزم, اصل ایکسٹریمزم جو ہے نا وہ کفر میں ہے, خوشیوں میں بھی آپے سے باہر, خوشیوں میں نعمتوں کو اپنے لے کر چل پڑا اور دوسری طرف جب خوشی گئی تو ہاسپٹلائز ہو گیا, سائیکٹرسٹ پہ جانا پڑ گیا, بہکی بہکی باتیں کریں, اس کے ساتھ ایک اور کیفیت کیا ہوگی, ولئن ازقناہ, اور اگر ہم چکھائیں اس کو کیا, رحمتم منا, رحمت اپنے پاس سے, من بعد ضراء مستہ, اس تکلیف کے بعد جو لگی تھی, اب آپ مائنڈ کو ساتھ چلائیں, بہت اس کو کی تکلیف ہوئی تو مایوس ہو گیا, ڈپریشن میں چلا گیا, ٹرینکلائزرز پہ چلا گیا, ڈرگ ایڈکٹڈ ہو گیا, شراب کے نشے میں چور ہو گیا, اب ایک دم اس کی بات پوری ہو گئی جو وہ مانگ رہا تھا, اللہ نے واپس پھر خیر دے دی, اب جب تکلیف گئی رحمت مل گئی تو کیا کہتا ہے, اب اس جملے کو آپ ہائی لائٹ کر لیں, ہم سب کے لیے اس میں ایک آئینہ ہے, لَيَقُولَنَّ, البتہ ضرور وہ کہے گا, ہاذا لی, یہ تو میرے لیے, آئی ڈیزرو دس, یہ لکھ لیجیے حاض علی کے نیچے, آئی ڈیزرو دس, چونکہ میں اس کو ڈیزرو کرتی تھی, اللہ نے دی, یہ تو میرا حق تھا, یعنی یہ ہے ایک شیخی خورا انسان کہ سختی کا وقت اگر اللہ کی رحمت سے گزر جائے, حالات اچھے بھی ہو جائیں تو فخر سے پھر دعوے شروع کر دیتا ہے, کہتے دیکھو میں نے بچے کو پڑھایا نا تبھی تو اتنی اچھی جاب ملی, جی ہم نے اپنے بچوں کو اتنا کچھ سکھایا ہوا ہے تبھی تو یہ اتنے اچھے ہیں نا, اس وقت پھر وہ اپنے آپ کو بہت دوسری طرف لے جاتے ہیں, اور یہ وہی جملہ ہے جو پیچھے ہم نے قارون کے ناطے سے پڑھا تھا کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے اپنے علم کی بیس پہ ملا ہے, جب ہم اپنے بچوں کو دنیاوی ڈگریز دلواتے ہیں, کچھ بھی تعلیم ہوتی ہے تو عموماً اس کے بعد یہی نہیں تصور آ جاتا, ہاں علی چونکہ پڑھا تھا پھر تبھی تو بچے کامیاب ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو توڑتا ہے. اچھا یہ دوسری چیز آ گئی, پہلی کیا دیکھی, تکلیف آتی ہے تو قنوت یوس, دوسری دیکھی کہ اگر نعمت مل جائے بعد میں تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا, تیسری اب اس کی سوچ دیکھیے گا, وما اظن و ساعت قائمتا, میں کوئی نہیں سمجھتا کہ قیامت وغیرہ بھی کوئی آنے والی چیز ہے, یعنی دنیا کی تعلیم جب مادہ پرستی کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو انسان قیامت کو مانتا ہی نہیں, کہتا کوئی قیامت وغیرہ نہیں آنی, یہ مولوی ڈراتے رہتے ہیں, چلو مان لیا مولوی صاحب کے کہنے پہ قیامت آ بھی گئی, ولہی رجیتو الی ربی, اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف, इन नली इंद हुलल हुस्ना, तो फिर मेरे पास वहां भी बेहतरी होगी। चौथा रवैया, अगर आप गौर कर रहे हैं ना, तो चार रवैये हैं इन आयात में कि जब क्यामत अगर आनी है ना, तो देखना जिस अल्लाह ने मुझे दुनिया में जैसे दे दिया ना, वहां भी दे देना। अगर आप याद करें तो सूरत कहफ के आयत 36 में हमने एक अमीर शख्स और एक गरीब का मुकालमा सुना था। दो दोस्त थे और एक अपने माल और दौलत पे रीझ रहा था और दूसरा उसको समझा रहा था। फर्क दोनों में सिर्फ कितना है, उधर क्या था, रुदित तू, रद्दा से, रद्दा या रुद्दू, यहाँ क्या, रुझी तू, रजा, रज्जू से। देखा जाए तो एक मादा प्रस्त और मटीरियलिस्टिक इंसान की सोच की बेस्ट पिक्चराइजेशन इन आयतों में हो रही है। पहली बात, दुनिया की जिंदगी असल जिंदगी है, उसी की जेबो जीनत में गुम है, कभी आखरत फिक्र की आती नहीं, आ जाए तो खुद को ये ख्याल दिलाता है कि कोई क़यामत नहीं आनी, ये फजूल वहमी बातें हैं, और अगर आ गई तो देखना अल्लाह ने तो मुझे बस बेहतर ही देना। ये दौलत के साथ जो बंदे को सोच लग जाती है ना, ये उसके लिए जहर कातल है कि अल्लाह ने दुनिया में दौलत इज्जत दे दी है ना, औलाद भी दी है, नेमतें भी हैं, दौलत भी है, देखना वहां भी होगा, मैं यहां भी मंजूर नजर हूं, वहां भी रहूंगा। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं। अब इनकी इन चार बातों का जवाब सुनिए, फलनुनब्बियन्नल्लज़ीना कफरू बिमा आमिलू, तब हम पूरी तरह जतला देंगे इन काफिरों को जो कुछ भी अमाल उन्होंने किए होंगे। क्या अमाल थे इनके, ये चार और सोचे, जो सोच रहे थे गलत बातें उसको अच्छा समझ रहे थे, हम पकड़कर इनको दिखाएंगे। वलनुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिन ग़लीज़, और हम लाज़िमन चखाएंगे बहुत ही गाढ़े किस्म का अज़ाब। यानी अल्लाह ताला कहते हैं इनकी बातें गलत हैं, ये जो कुछ कह रहे हैं ये बातें चलने वाली नहीं है। इसलिए अब देखिए सूरत का खात्मा है, अब बिल्कुल आप इमेजिन करें, अल्लाह ताला कहते हैं वह इज़ानम नाल इंसानी, और जब हम इंसान पर नेमतों की बारिश करते हैं, आरदा, इधर रुक जाए, छोटा सा कौमा लगाए, आरदा मुंह ही फेर लेता है। ये अरस कहते हैं चिक्स को, एराज करना कहते हैं मुंह फेरना, यानी चौड़ा हो जाता है। असल में इसमें चौड़ाई का मानी है। पाकिस्तान में हम कपड़ा खरीदते हैं तो क्या कहते हैं कपड़े का अरस कितना है, तो अरस क्या होती है, विड्थ, चौड़ाई। यानी जब कोई नेमत मिल जाती है तो नेमत देने वाले से मुंह फेर लेता है। वह ना भी जानी भी ही, और अपना पहलू बदल लेता है, भी जानिब के पहलू साइड, और ना बदल लेना साइड पे करता है। यानी नेमत को मिलते ही बंदे की सोच बदल जाती है, अग्रेसिव होता है, पहले दुआएं मांगता है, तहज्जुदें मांगता है, आज दिया, हाँ ये भी शर्त ठीक है, ये भी करवा रहे, अल्लाह कर दे, नेमत दे दे, फिर देखता मैं कितना अच्छा होता हूँ। जो ही नेमतें मिलती हैं तो फिर उजर, फिर बहाने, फिर गुस्सा, फिर अग्रेशन, वैजा मस्सहु शर्रु, अब अल्लाह फिर पकड़। आप इन आयतों में देखें ना, तो बार बार की पकड़ और बार बार की नेमत है। वैजा मस्सहु शर्रु, जब उसको शर पहुंचता है, फजू दुआइन अरीद, तो लंबी लंबी दुआएं मांगने लगता है। कभी याद करें, बच्चा बीमार हो तो कितनी खूबसूरत नमाज पढ़ी थी, कितनी लंबी दुआ मांगी थी। कभी कोई गम आता है तो जाए नमाज भी खुल जाते हैं, तस्बीहें भी खुल जाती हैं, कुरान के वर्कों से भी गर्द हटा दी जाती है। तो ये इंसान की कैफियत है, हम सब अपने ऊपर लेके देखें। अगर इंसान इन सारी आयतों पर गौर करे, ये एक मौजू की आयतें हैं, तो हम सब अपने आप को देखें, चंद सवाल करते हैं अपने आप से, क्या मैं सिर्फ दुनिया मांगती हूँ अल्लाह ताला से, चाहे उसका इंजाम कुछ भी हो? क्या नेमत छीनने पे मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ? और अपने आप से पूछें, मुझे क्या गम है, क्या डिप्रेशन है मेरा? मैंने देखा है माओं के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तालीम का गम लगाया होता है माओ ने, प्राइमरी का बच्चा या प्रेप का बच्चा, और माँ उसके गम में सफ़ेद कर रही है अपने बालों को कि हाय ये इसके ग्रेड्स कम ना आ जाए। छोटी छोटी बातों को हम बनाते हैं, और ये खालिस दुनियादार सोच है कि दुनिया के छोटे से छोटे फायदे को इतना बड़ा और छोटे से छोटे नुकसान को भी बड़ा समझते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये इनकी मर्जी है, लेकिन असल बात क्या है, अब फिर आगे देखिए, फिर थोड़ी सी बात और बदलती है। कुल अरअईतुम इन काना मिन इंदिल्लाहि सुम्मा कफरतुम बिही, ए नबी इनसे कहिए, क्या तुमने गौर किया, अगर ये कुरान वाकई अल्लाह की तरफ से हो, कितनी दफा का जिक्र आ रहा है जी, आप बताएं, यहां इस सूरत में कितनी दफा ये जिक्र आ रहा है कुरान का?
कुरान चौथी दफा,
छठी दफा जिक्र आया है, यानी 52 आयतों में छठी बार आप फिर तस्कर, ऐसे लग रहा है बार बार, देखो इस कुरान को जो तुम जुटलाते हो, अगर तुम्हारे ख्याल के मुताबिक ये मोहम्मद की तसनीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचो कि अगर वाकई अल्लाह का कलाम हुआ, सुम्मा कफर तुम भी, फिर तुम इसका इनकार कर चुके, तो फिर मन अदल्लु में मन हुआ फी शिकाकिम बईद, तो कौन होगा इससे भड़कर भटका हुआ जो दूर की मुखालफत में पड़ा हुआ है। कितनी चैलेंजिंग आयत है, بالکل وہی انداز ہے جو سورت سبا کی آیت 46 میں ہم پڑھ چکے. کہہ دیجئے میں تو تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو کر کے یا ایک ایک، پھر غور و فکر کرو اور یہ بات دیکھ لو کہ ماں بھی صاحبکم من جننا. تو یاد رکھیے جن کو نہیں سننا قرآن ان کو قرآن بوجھ لگتا ہے. اللہ کہتے ہیں غور کرو، دیکھو، فکر کرو، سوچو. اس لیے باخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے. آفاق، افق، کائنات، یونیورس میں نشانی ہے. خوشی غم کی صورت میں اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، کائنات میں زلزلے، طوفانوں، سیلابوں کی صورت میں آتی ہیں. اسی طرح ہماری زندگی میں جذبات میں مختلف قسم کا ہیجان ہوتا ہے، اس میں نشانیاں ہیں. اور وفی انفسہم، یہ بڑا معروف حصہ ہے قرآن کا، بہت سارے لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں، اور ان کی تو اپنی جانوں میں بھی نشانی ہے. ہم سب دیکھیں تو ہمارے جسم میں اللہ کی کتنی نشانی ہے، آنکھیں ایک نشانی، کان، ہاتھ، دل، دماغ، سوچ، کتنے. اور ہماری اپنی عمر کا بڑھنا، بچپن میں ہمیں کچھ اور اچھا لگتا ہے، جوانی میں کچھ اور اچھا لگتا ہے، بڑھاپے میں اور اچھا لگتا ہے. یہ وقت کے ساتھ ساری تبدیلیاں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ اللہ بھیجتا ہے. تو کہا حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے. کتنی دفعہ ذکر آیا قرآن کا؟ ساتویں اور آخری بار اس آیت میں، کہ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں. اور اس میں اشارہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ، سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ، قرآن کی خوبیاں لوگوں کے اوپر کھلتی جائیں گی. لوگوں کو اس کائنات کے راز سائنس کی زبان میں جو دکھیں گے وہی 1400 سال پہلے قرآن میں ہے. تو لہٰذا لوگ اب قرآن کو سائنس کی زبان سے سیکھیں گے. اور یاد رکھیے میں نے یہ جملہ پہلے بھی بولا ہے کہ آنے والے دور کا مبلغ سائنس ہے. آج میں اور آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں نا، آنے والے دور میں سائنس کی جائیداد لوگوں کو اسلام اور قرآن کی سچائی کا یقین دلائیں گی. اور اس کا سلسلہ آغاز ہو چکا، لوگ دیکھ چکے کہ کیسے کائنات میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے کر ہم سب کے بیچ میں رکھ دی. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آج ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کریں اور اپنے بچوں کے سکولوں میں ایسے ٹیچرز کو رکھیں جو سائنس کو مذہب سے ریلیٹ کر کے دکھائیں. تو آپ دیکھیں کہ بچپن سے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ اسلام خوبصورت طریقے سے پیش آ جائے. آج جو باتیں ہمیں پتہ ہیں وہ پہلے نہیں پتہ تھی، آج جو نہیں پتہ کل وہ پتہ لگ جائیں گی. زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیے 200 سال پرانی ہے سائنس، سائنس کا سبجیکٹ شروع ہی 200 سال پہلے ہوا. اور آج آپ دیکھیے خاص طور پہ یہ جو 50 ایئرس پچھلے ابھی سے گزرے ہیں، آئی فون کی ایجاد دیکھ لیجئے، الٹرا ریز کو دیکھ لیجئے، نئی نئی ایجادات ہیں، قرآن کے ساتھ مطابقت ہو رہی ہے. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے یہ پتہ چلا کہ دنیا کی تعلیم اچھی بات ہے، لیکن اس کو اللہ سے کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. سائنس پہ غور کرنے لے کریشن میں غور کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے کریشن پہ غور کر کے کریٹر تک پہنچو کہ یہ بنانے والا کون ہے اور کیوں بنایا. ما خلقت ھذا باطلا، پرپز آف لائف سمجھو، اللہ نے یہ سب کچھ کیسے بنا دیا. اور خاص طور پہ اب دیکھیے یہ قرآن جس طرح باتیں کرتا ہے، اس دور میں عرب لوگ ان چیزوں کو نہیں مان پاتے تھے جو چیزیں ان کے سامنے تھی. چیلنج 4 دفعہ قرآن میں موجود ہے کہ اس طرح کی ایک صورت بنا لو، 10 صورتیں بنا لو، ایسا قرآن بنا لو، کچھ تو کرو. بہت مان تھا ان کو اپنی شاعری پہ، اپنے ادب پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آج اس قرآن کو عام کریں اور لوگوں کو لائیں. آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر موریس بوکائی نے قرآن اور سائنس کے نام پر ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے قرآن کی تعلیمات کے ساتھ میچ کر کے دکھایا تھا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام دیا، سرجن تھے وہ، انہوں نے اسلام کو کھول کے دیکھا جب ادھر سے، تو اللہ نے ان کا بھی دل کھول دیا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ سائنس کو برا نہ کہیں، دنیا کی تعلیم کو برا نہ کہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے علقاء کا لفظ ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں، سورت مومنون آیت 14 میں پڑھا. آج یہ پچھلے فیو ایئرز اگو امبرولوجسٹ انہوں نے اس کی اصل جب کھولی تو بچہ ماں کے پیٹ میں بالکل جونک سے کی طرح چپکا ہوتا ہے، جیسے چوئنگم ہوتی ہے نا، اس طرح قرآن نے علقاء کا لفظ رکھا. ہینگنگ دو معنی ہے، پیچھے بات ہوئی تھی اس پہ. اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں، سورہ یاسین آیت 40 میں ہم پڑھ چکے، وکل فی فلقی یسبحون، کائنات میں سب چیزیں تیر رہی ہیں. آج سائنس کی آپ جب کہانیاں پڑھتے ہیں تو یہ سب سچ ہوتا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ حرکت کرو، حرکت کرو. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. یعنی اس کائنات میں کوئی چیز خاموش نہیں ہے، رکی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ایٹم بھی نہیں رکا ہوا، وہ بھی چلتا ہے. بس تبدیلی ہی ہر وقت ہوتی ہے، کوئی چیز رکتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سائنسی طور پر بھی آگے لے جائے تاکہ دنیا کو ہم اسلام دے دیں. और लोगों को पता चले। फिर एक आखिरी बात करके इस आयत के आगे चलते हैं। सन और री में सीन क्या है? सौफा के मानों में, खास तौर पे मुस्तकबिल। पीछे बात होगी ना, सीन सयकूलु सुफहाउ मिन नास में सा क्या था, अलग होता है। सौफा सून इंग्लिश में कह लें, उर्दू में अमन करीब कहते हैं। इससे पता चलता है कि डिस्कवरीज मुस्तकबिल में होती ही रहेंगी और कुरान की सच्चाई जो है वो साबित होती रहेगी। लोग मान जाएंगे कि कुरान हक है। फिर फायदा क्या होगा? अवलम यकफी रब्बी रब्बी का अन्नहु अला कुल्ली शयइन शहीद। क्या ये बात काफी नहीं कि आपका रब हर चीज पे गवाह है? कायनात की हर चीज उसकी आंखों के सामने है। तो मान जाएं कि रब भी है, उसको नहीं देख पाते तो क्या होगा? अला इन्नहुम फी मिर्यतिम मिन लिकाए रब्बी। अब आखिरी आयत पे जरा गौर कीजिएगा, पूरी सूरत के अंदर किस तरह खोल के तौहीद अमली को रखा और आखिर में अब उनके दिल के शुबात को पेश करके कहा, असल बातें जो ये करते हैं ना इस्लाम के खिलाफ और अल्लाह के खिलाफ, बात क्या शक की बीमारी है। अला खबरदार, बी अवेयर, इन्नहुम बेशक वो फी मिर्यतिन, शक में। मिर्या का लफ्ज क्या है? वो शक जिसमें कुलक भी हो, जिसको आप कहते हैं दिल में कुछ ख्याल डाल देता है इंसान के नेगेटिव से। किस चीज का शक है? मिल लिकाए रब्बी है, अपने रब की मुलाकात से। अल्लाह अकबर। जो आपको बताया कि ब्रदर से जो मुलाकात कल हुई थी परसों जहाज में थे, तो बिल्कुल अल्लाह से मुलाकात का शक ही है, तभी तो इंसान इतनी बड़ी बड़ी बातें करता। तो अल्लाह ताला कहते हैं अला इन्नहु बिकुल्ली शय मुहीत, आगाह हो जाओ कि वो हर चीज का इहाता किया हुआ है। इशारा है इसमें कि वो एक दिन तुमको भी पकड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए सूरत पूरी हुई। जिक्र किया था कि सूरत फुसिलत में इनफिरादी अमल की बात है। इंशाल्लाह कल से हम सूरत शुरा शुरू करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि दीन लागू कैसे होता है। और अगर आप इन दोनों सूरतों को जमा कर लें तो आज फर्द की इस्लाह और मुआशरों की, खानदानों की, हुकूमतों की, सियासत की इस्लाह कैसे कीजिए, इन सब का जवाब होगा। और मैं दावत दूंगी कि सूरह शूरा आप में से कोई भी मिस ना करे। इसके बगैर आपको इज्तमाई जिंदगी जीने का तरीका भी नहीं पता चलेगा। और अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक भी दे, फिक्र लगा दे, और हम अपने आप को बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला के हुक्मों पर चला दें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।